Market Mantra. Good evening, listeners. Welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Sonu Sood and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar. Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aaj aamantrit hain aarthik mamlon ke jaane mane vishleshak उदयन रे. उदयन नमस्कार. कार्यक्रम में स्वागत.
धन्यवाद मनोज. थैंक यू सोनू.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं सोनू सूद.
द टॉप स्टोरीज टुडे. बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस एंड ऑन मिक्स्ड नोट अमिड हाई वॉलेटिलिटी. एसबीआई बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग अप टू ₹20,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25. एंड ऑयल प्राइसेस स्टेडी अमिड कंसर्न्स ओवर एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट. Brent crude up by 0.16%, WTI declined marginally.
घरेलू शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच हुआ कारोबार. अंत में मिले जुले रुख के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक. एसबीआई निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम संघर्ष बढ़ने की आशंकाओं के बीच मिले जुले रहे. ब्रेंट क्रूड का मूल्य थोड़ा सा ऊपर आया, वहीं WTI थोड़ा नीचे आया. घरेलू शेयर बाजार में आज तेज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ. हालांकि कारोबार के अंत में प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुए. एक ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 36 अंक बढ़त के साथ 77,337 के नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी अपने उच्चतम स्तर से 42 अंक घटकर यानी आज 0.18% नीचे आकर 23,516 दर्ज हुआ. छोटी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो वहां बिकवाली अधिक तेज रही. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.91% की गिरावट हुई. वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.58% नीचे आ गया.
As Manoj just told you, India's equity benchmarks ended on a mixed note after opening the day with a fresh all-time high amid soaring volatility. At close, BSE Sensex was up 36 points or 0.05% at 77,337 and the Nifty was down 42 points or 0.18% at 23,516. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was down by 0.91%, while the small-cap index fell 0.58%. 10 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were HDFC 3.06%, Axis Bank 2.94%, and ICICI Bank with 1.93% rise. Conversely, the three major laggards were Titan with 3.47% fall, Larsen & Toubro 2.66%, and Bharti Airtel with 2.49% fall. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors were in loss. The three gainers were BankEx 1.97%, Financial Services 1.1% up, and Information Technology 0.38% up. Whereas realty sector fell as 2.97%, consumer durables fell 2.42%, and capital goods fell 2.15% and were the three major laggards. The overall market breadth was positive. Out of 3,972 companies, the shares of 1,634 companies advanced. 2,235 declined and 103 remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज एक डॉलर की तुलना में रुपया 83.45 रूपये के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.05% घटकर 105.20 के आसपास कारोबार कर रहा था। उदयन, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कल नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए थे प्रमुख सूचकांक, आज थोड़ी सी नरमी देखी गई। हालांकि सेंसेक्स आज भी अपने सर्वोच्च स्तर पर है, लेकिन कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को?
देखिए, ये अभी जिस तरीके का रन अप हुआ है मार्केट्स में, स्पेशली कुछ इलाकों में जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में, तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि वहां पे उछाल जो है रन अप काफी जबरदस्त रहा है, तो शायद टाइम टू टाइम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। और कई बार क्या होता है, आप रोटेट भी करना चाहते हैं, एक सेक्टर में ज्यादा एक्सपोज हो गए तो आप नए जगह से आप वैल्यू लेना चाहेंगे, दूसरे ऑप्शंस आप ढूंढेंगे, तो वो कुछ बातें हैं जो अब सामने दिख रही हैं। और अभी काफी कुछ निर्भर करेगा आपके अमरीका से जो कुछ डेटा, मैक्रो डेटा आने की उम्मीद है अगले कुछ दिनों में, इस हफ्ते में, वो शायद डायरेक्शन को थोड़ा डिटरमिन कर जाए। पर ये इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम अमेरिका की तरफ देखें जो पिवोटल पॉइंट है मार्केट का, यह है कि मार्केट क्या मानती है कि कितने कब और किस लेवल का रेट कट होगा। तो अभी जो कन्वेंशनल और रादर प्रिवेलिंग विजडम है, जो ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस साल सिर्फ एक ही रेट कट होगा, पर वो कब होगा इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। मार्केट चाहती है, मार्केट ये विश्वास कर रही है कि ऐसा होगा, पर अगर आप केंद्रीय बैंक, अमरीकी केंद्रीय बैंक की तरफ देखें, उस वहां से ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहे ठोस कि ऐसा कुछ होगा, पर ये मान के चल रहे हैं कि इसके बारे में बातचीत कॉन्वर्सेशन में है। पर वो अगर जैसे ही उसके बारे में जानकारी मार्केट को और कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप देखेंगे मार्केट में एक अलग उत्साह आ जाएगा। और बाकी जो है, जब हमारे जैसे मार्केट्स में रन अप होता है, मैं विदेशी निवेशकों के बारे में बात कर रहा हूं, तो जब आप पाएंगे कि हमारे यहां पर रन अप ज्यादा हो जाएगा, तो वो अब उनका एलोकेशन वो अलग कर जाते हैं, तो वो फिर कहीं और किसी और मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में ले जाएंगे। ये बताने लायक जरूर है कि हमारे भारत कई डेट, इंटरनेशनल डेट इंडेक्सेस में आ रहे हैं, तो हमारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी अब काफी हद तक विदेशी निवेशकों के रेडार में
यानी आदर्श स्थिति यहां की दिख रही है उनको।
जी जी जी, तो और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मनोज की विदेश में, स्पेशली वेस्ट में, इक्विटी मार्केट्स जो, स्टॉक मार्केट्स जो है, जो डेट मार्केट्स होते हैं, वो स्टॉक मार्केट से कई गुणे में हो जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट से कहीं बड़ा, तो हम लोग यहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे इतने ट्रिलियन डॉलर का कैपिटलाइजेशन हो गया, तो डेट मार्केट अगर नॉर्मल तरीके से अगर बढ़े, तो वो फिर उसका साइज कई मल्टीपल होता है स्टॉक मार्केट को। तो हमारे यहां पर डेट मार्केट्स को डेवलप करने के बारे में बातचीत बहुत दिनों से चल रही है, और काफी कुछ अभी भी काम बाकी है, पर वो अगर ठीक से अगर चले, तो कई चीजों में जो डेट, मतलब ऋण जो रेज करते हैं, वो बैंकों से नहीं किया जाता, वो डेट मार्केट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है देश में और विदेश से, तो वो एक जगह है जो वो ओपन अप कर रहा है। और जैसे जैसे कई इंडिसेज में हम भारत के सिक्योरिटीज डेट या और इक्विटी सिक्योरिटीज आती जाएंगी, आप पाएंगे कि स्टेबल फ्लोज और न्यू फ्लोज आती रहेंगी।
So Udyan, you have just outlined that the U.S. decision to cut interest rates is going to be a very important pivot right. point. Rather, I would say that to further boost the markets. But right now we see that already they are at all-time highs. You know, every day they are touching new highs. And as you just mentioned, that $5 trillion market cap has been exceeded yesterday for the right. first time in the markets. Do you think there is any fear of overheating? As some analysts have been saying, do you see any major correction coming in the following days?
The great part, Sonu, is this, that even if a correction comes, so it's like, let's think of this whole stock market thing like a jet which is landing. You know, you've seen these fighter jets, when they land, they have some of them, sometimes you've seen a parachute coming out from the behind. So the idea is to control things. Now, in our case, the parachute is the retail money that's flowing in through mutual funds and even a small part of the provident fund money, NPS that's going in, insurance money. These are long-term money that's going in. So what's happening in small bits, it's coming in. And because there's a whole generation of investors which have come in through all these apps and other things, digital sort of investing. So what's happening is, even if there's a correction, there is a lower bound, there's a floor, there's a parachute. So, you know, it'll never go out of hand. I mean, to me, it doesn't seem these are very important things that hold things back. These were not there, say, 15 years ago. So what it does is it gives a lower bound to the any kind of correction. And then, you know, it actually helps, you know. Then people who are adventurous, they can say, okay, the markets have dropped a little too much. And we are very confident about where the markets are going to go. Therefore, I think we are going to increase at a tactical level. We're not talking about very small investors who are just starting out, but people who are adventurers who are already dabbling in the markets, they can do those things as well.
In fact, if you see, you know, post-COVID, there was a renewed, buying in the markets, and there was a lot of, you can say, retail investors, a lot of DMAT accounts were opened, and there was a very intense interest in the investing in the stock markets. So you feel that the entire financial landscape and the stock market landscape, it has matured in these 3-4 years, would you say?
Definitely the participation has increased. The maturity, the test for maturity, Sonu, in my opinion, would be when there's a downturn. When there's a downturn in the market, and there's a downturn for quite some time, which doesn't seem to be likely. If that is when, if people don't move out, that is what is used to be the story in the past. So during boom periods, a lot of DMAT accounts open and then they would go dormant. If that is not going to happen and people are going to, you know, have a good experience, you know, they are not going to go out, then what we can say it's going to mature, and that is how it should be. You know, there have been phases like in the 90s in the US where mutual funds did very well because the economies was doing well, the stock markets were doing well, and you would see concomitant effects, you know, trickle down or other sort of domino effects. So every time markets do well, people book some profits, there will be car purchase, which is called the wealth effect, you know. The people might go for a down payment for their home or something like that. So these things were not wealth effect was not a major thing that people would have talked, but I suspect in a couple of years, maybe 2-3 years, maybe it's already happening, you will see that, you know, suddenly there's an upsurge and people say, okay, fine, there's been too much of a run up and I'm not feeling confident, let me shave off about 10% of my holdings and let me spend that money, you know, because it looks like a unsustainable run up. So that's not going to be there for everybody, but yeah. Sonu, it's also worth pointing out that by 2030, 100 million Indians are going to be very affluent people. Now, 100 million, to give you a perspective, it's probably almost 1.5 times or maybe almost 2 times of Great Britain's population. I stand corrected. I might be wrong about my figures. Mm-hmm. One third of the U.S. population, little less than one third. So that is the kind of size of investors, people who can spend, that means a lot of power globally and in the stock markets as well.
Utin, bada hi yani kehle ki rochak padav aapne la diya hai karyakram mein ki ek badi abadi bhartiyon ki jo ameer banne wali hai aur ameer banti hui dikh abhi bhi rahi hai. जो ग्रामीण भारत से आंकड़े आए हैं और विभिन्न अवसरों पर जो बड़े सेल हुआ करते हैं वहां हमने ग्रामीण भारत की भी भागीदारी देखी है, छोटे शहरों की भागीदारी देखी है, तो क्या यह उनका धन शेयर बाजार में यानी पूंजी बाजार में लगता नजर आ रहा है जो विदेश के प्रभाव से हमें मुक्त कर देगा और हम अपने जो निवेशकर्ता हैं उन पर स्थिर हो पाएंगे?
बिल्कुल मनोज, ऐसा होता नजर आ रहा है. वो कारण यह है कि 2012 के आसपास सेबी ने, जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं और म्यूचुअल फंड रेगुलेटर हैं, उन्होंने प्रोत्साहन दिए थे, इंसेंटिव दिए थे फंड हाउसेस की वो आप छोटे शहरों में जाएं, रिलेटिवली मेट्रो से दूर जाते रहे, और तकरीबन 30 ऐसे शहरों की तरफ एक्सपेंशन की बात हुई है और वहां पर पेनिट्रेशन हुआ है वहां पे लोग निवेश कर रहे हैं और जो डेमोक्रेटाइजेशन है, जो लोगों को एक्सेस मिला है। पहले क्या होता था, बड़े बड़े शहरों, कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में जो एक गतिविधि, जो निवेश की गतिविधि होती है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट की, वो अब दूसरे शहरों में, तो आप उत्तर प्रदेश बिहार के कई ऐसे बड़े शहर हैं जो कि मेट्रो नहीं है, वहां पे आप जाके ब्रांचेस पाएंगे ब्रोकिंग फर्म्स और दूसरे और वो लोग वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स की हो रहा है, इन्वेस्टिंग हो रही है वहां पे, बातचीत हो रही है, इन्वेस्टर मीट्स हो रहे हैं, तो वो सब चीजें हो रही हैं। क्या वो तादाद है जो जिससे हम एक रेवोल्यूशन इनकलाब के बारे में बात करें? एक पर्टिकुलर स्तर में इनकलाब तो है ही, क्योंकि भारतीय स्टॉक मार्केट में पहले फायदा विदेशियों का होता था, तो जितनी ज्यादा शेयर हमारा बढ़ता जाएगा। पर फिर भी मनोज, ये बताने लायक है कि जीडीपी का जो हिस्सा है या फाइनेंशियल सेविंग्स का जो हिस्सा है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का, वो अभी भी बहुत कम है। सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी फिक्स डिपॉजिट है, 50% से ज्यादा, और इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड वो 16-17%, उसके बाद चौथे या पांचवें नंबर पे म्यूचुअल फंड और शेयर आते हैं। तो हम काफी दूर आए हैं, पर अभी हमें काफी दूर जाना है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट से कोई अगर अपने बच्चे के फ्यूचर के कॉलेज के बारे में निवेश कर रहा है तो बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलने वाली। तो वहां से जहां पे खर्चे, जहां कॉस्ट यहां पे बढ़ रहा है, रिटायरमेंट लोग बड़ों के आशीर्वाद से लोग ज्यादा लंबी उम्र तक जी रहे हैं, तो रिटायर्ड लाइफ बढ़ रहा है, तो इनके लिए फिक्स डिपॉजिट्स या सिंपल एंडाउमेंट प्लान से काम नहीं बनेगा, उनको मार्केट का भी बेनिफिट लेना पड़ेगा समझदारी से। तो ये चीजें हो रही हैं, ये तरक्की हुई है, पर अभी काफी रास्ता वो करना बाकी है।
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर तेजी बनी रही, चीन को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। हांगकांग का हिंग सिंग आज 2.87% की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। जापान के निकेई 225 में 0.23% की तेजी आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.21% ऊपर आकर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.7% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक सभी प्रमुख बाजारों में बिकवाली दिख रही थी। फ्रांस का कैक 40 0.61% नुकसान में था। जर्मनी का डेक्स 0.25% और लंदन का फुटसी 100 0.02% घाटे के साथ चल रहे थे।
उदयन, जस्ट यू नो योर कमेंट ऑन द फैक्ट दैट इन इंग्लैंड यू नो द inflation rate has fallen to 2% in May. It was 11.1% in October 2022. And also we are seeing May CPI is 2.6% in Eurozone, 3.3% in US, and in India also it is 4.7%. So you feel that inflation, big problem of inflation is now, it has subsided?
Yeah, it is. It has subsided. But you know what happens, Sonu, is once you remain in a period of high inflation, it's inflationary expectation. What do you expect? It might be going down, but now you feel that, maybe there's a snake around the corner. So, so that becomes, what is the inflation?
That takes more time.
Yes, and sometimes it feels worse than it actually is. So, sometimes it's only certain items that make you feel bad with regards to inflation. So in US, if everything is going fine, but your petrol prices, gas prices, they're not doing well, they're still high, even the inflation rate, overall inflation rate is low, people will feel dissatisfied and upset about it because they need to travel by cars. So it just depends on, US it could be rents, which is a part of the inflation. So question is which part affects people more and people react to it.
So you feel the central banks will continue to remain cautious?
Oh, absolutely.
About starting the rate cuts.
Yeah, absolutely. Because they are, you would see everybody saying that you don't need to do adventurism. You need to be cautious. You will be data driven. Because unfortunately, central banks haven't really covered themselves with glory. It's been a difficult period for them.
Yeah. We'll move to the U.S. markets now. The S&P 500 and NASDAQ closed at record highs yesterday, buoyed by Nvidia's continued surge to new peaks, while the Dow ended barely higher in subdued pre-holiday trading following softer-than-expected U.S. retail sales data. The S&P 500 appreciated 0.25%, the Dow Jones Industrial Average was marginally up 0.15%, and the NASDAQ Composite was also up by 0.03%. If we see in U.S., you know, there has been a nearly 15% rise this year, the calendar year. So you feel that despite all the fact that, you know, people have been talking about possibility of hard landing and recession, the economy is pretty resilient and inflation is under control and corporate earnings also, especially AI companies, is very healthy.
Actually, the key part, I think you use the word resilient. So that has been the surprise element. You know, typically before, what used to happen, people would say, you know, after a certain high inflation period, economic growth used to plummet. The other interesting thing that has happened, Sonu, is that post-pandemic, people had a lot of blue-collar labor. And because they were finding it difficult to get them, so they don't want to retrench or bench and stuff like that. So that has become some of the common things that used to happen in a business cycle or in post-inflation cycle, high inflation cycle. Those are not happening. But having said that, Sonu, it's worth pointing out to the listeners here that the growth, the stock market growth, in the U.S. is in a narrow sort of space. It's basically tech driven. All these mega caps, Nvidia being a brilliant example, and it became the most valuable company in the U.S. yesterday. So it's pretty narrow in that sense. That's compared to our case, it's a little better. But over a period of time, this is what it happens. You know, some stocks or some stories catch the fancy. People refuse to see that, you know, there is a gravity play also playing in the stock market. But it's worth pointing out that it's still, most experts are now beginning to say that things are happening in a pretty narrow band out there.
Now we move to some macroeconomic stories from back home. State Bank of India approved raising up to 20,000 crore rupees by issuing long-term bonds in the financial year 2025 for funding infrastructure projects and affordable housing units. The central board at its meeting held today said that the fundraising will be done through a public issue or a private placement. Following the announcement of the new bond issuance plan, SBI's share ended 0.95% up at ₹853 as compared to its last closing price. Earlier this month, SBI raised $100 million through its London branch by selling three-year senior unsecured floating rate bonds that were sold at a spread of 95 basis points above the secured overnight financing rate, SOFR. Meanwhile, in January, SBI raised 5,000 crore rupees through perpetual bonds at an 8.34% coupon rate. So you were just talking about the importance of bonds.
Yeah, absolutely. And you will find companies as the bond markets improve, they widen and deepen. You find that people going away from bank debt to bonds because the bank loan, their tenure is much shorter. For infra, you need longer tenured instruments.
आइए आगे बढ़ें। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट 2024-25 से पहले आज नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श के पहले दौर की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामले, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट मामलों के विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी सम्मिलित हुए।
India's non-banking financial sector has registered a growth of 10% to become the third largest in the world, next only to the United States and the United Kingdom, according to an SBI report that highlights the growing strength of the country's financial sector. It further said that the improvement in asset quality and the strong macroeconomic fundamentals have played a crucial role in improving the Indian banking sector. The report also points out that the RBI's efforts in strengthening the financial system included enforcing the regulatory measures that ensured the sector remained well cushioned against economic shocks. Non-banking financial institutions do not possess a full banking license and thus cannot accept public deposits. These entities focus on giving loans to consumers and businesses, which play a key role in driving up economic growth.
बहुत संक्षिप्त टिप्पणी एनबीएफसी सेक्टर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसे हम माने देश के लिए
बिल्कुल मनोज एक जमाना था 21 साल पहले तब 40,000 एनबीएफसी थी मतलब हर नुक्कड़ कोने में एनबीएफसी थी वहां से उसको रेगुलेट करके हेल्दी किया गया फिर आईएलएनएफएस की घटना घटी वो एपिसोड हुआ उसके बाद काफी मजबूत किया गया है और एनबीएफसी मनोज जहां पे बैंक जा नहीं पाती क्योंकि बैंक को सर्टन मानदंडों के अंदर ऑपरेट करना पड़ता वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन कि हिसाब से अगर देखा जाए वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है
एमएसएमई सेक्टर
वो एब्सोल्युटली यू नो लॉट एंड इवन रिटेल पीपल यू नो लोन्स दैट यू अ बैंक माइट नॉट गिव टू अ पर्सन यू माइट एनबीएफसीज माइट जस्ट मेक देम यू नो एक्सेसिबल
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं सरकार देश के प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान स्थापित करना चाहती है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 पर मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ये किसानों की आय बढ़ाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है
Now we'll move on to commodities. Oil prices were little changed today, staying close to their highest levels in 7 weeks as the market weighed concerns over escalating conflicts against demand worries following an unexpected rise in US crude inventories. Brent crude was up by 0.16% to $85.47 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI crude marginally lower at 0.02% to $81.55 per barrel when reports last came. And you were just mentioning how important gasoline prices are in the U.S. In fact, fuel prices are all over the world. So they do seem to have stabilized somewhere around 80, 85. Earlier we were thinking because of all these geopolitical conflicts, it might cross 100?
Yeah, that is basically whenever they're going to get the oil producing countries, whenever they're going to see demand softening down, they're going to cut supply. They're going to cut supply. So it's going to be an interplay adjusting to demand, and the oil producer typically going to look at 80 plus kind of a range, and they would like to the prices to be there.
So that will be satisfying both the producers and the consumers.
I mean, we import a lot. We'll love to have it at 65, but we'll probably settle for 85 if we don't have a choice.
आइए चलते हैं सराफा बाजार मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी तेजी देखी गई समाचार तैयार किए जाने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.06% बढ़त के साथ 71,785 रूपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.03% बढ़कर 89,107 रूपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चलें तो कॉमेक्स में सोने का मूल्य 0.08% घटकर $2,345 प्रति औंस पर था वहीं चांदी 0.19% बढ़त के साथ $29.94 प्रति औंस पर चल रही थी उदयन दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने खरीदने की बातें चल रही हैं कई स्थानों पर खरीदा भी गया है आने वाले दिनों में सोने के आसार कैसे दिख रहे हैं आपको
देखिए जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे संघर्ष होते रहेंगे और फाइनेंशियल सिस्टम में अगर प्रेशर दिखता है तो सोने का हिसाब किताब जो डिमांड बना रहेगा और इस साल आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें
और थोड़ी चमक तेज हो सकती है
चमक हो सकती है
बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे
धन्यवाद
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark equity indices end on a mixed note amid high volatility. SBI board approves raising up to ₹20,000 crore in financial year 2024-25. And oil prices steady amid concerns over escalating conflicts. Brent crude up by 0.16%, WTI declined marginally. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team of Market Mantra. Goodbye. Market Mantra.